एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानो गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और आज की ज्ञानो गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो एक बीमारी को सिर्फ बीमारी नहीं, एक किरदार की तरह देखती है।
जी हाँ, एक किरदार जिसकी अपनी एक कहानी है, एक जीवनी है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ मुखर्जी की किताब द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर की, मतलब कैंसर की जीवनी।
और ये सिर्फ एक मेडिकल किताब नहीं है, ये तो इतिहास, विज्ञान और हमारे अपने शरीर की कहानी है।
और आज के जमाने में ये बहुत जरूरी भी है ना, कैंसर कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगियों को छूता है।
हाँ बिल्कुल, तो इस किताब के जरिए इसके लंबे इतिहास को समझना शायद हमें एक नया नजरिया दे सकता है, डर थोड़ा कम हो।
सही कहा।
तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को।
अच्छा, पहले लेखक की बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी कमाल के लेखक हैं।
हाँ, और सिर्फ लेखक नहीं है, उनकी जो बैकग्राउंड है वो उन्हें इस किताब के लिए शायद सबसे सही व्यक्ति बनाती है।
बिल्कुल, वो एक प्रैक्टिसिंग ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मतलब कैंसर के डॉक्टर हैं जो रोज मरीज देखते हैं,
और साथ में रिसर्चर भी हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और उनकी पढ़ाई स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड।
हाँ मतलब वो तीनों भूमिकाएं निभा रहे हैं, डॉक्टर की, वैज्ञानिक की और लेखक की।
और इसी वजह से किताब में गहराई आती है ना?
जी,
डॉक्टर होने के नाते वो मरीजों का दर्द समझते हैं,
वैज्ञानिक होने के नाते वो कैंसर के पीछे का जो जटिल विज्ञान है, जेनेटिक्स है, उसे समझते हैं,
और लेखक के तौर पे वो इन सब मुश्किल चीजों को एक कहानी में बुन देते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी।
हाँ, वो मरीजों की कहानियाँ, मेडिकल हिस्ट्री, साइंस की बातें, यहाँ तक कि कैंसर रिसर्च की पॉलिटिक्स, सब कुछ जोड़ देते हैं बड़े आराम से।
ये कमाल की बात है, जानकारी के साथ साथ वो एहसास भी करा देते हैं पूरी लड़ाई का।
कोई ये किताब आखिर है क्या? जैसे हमने कहा, कैंसर की जीवनी।
हाँ, मतलब लगभग 4000 साल का इतिहास कैंसर और इंसानियत का।
और ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो इस बीमारी के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है।
मुखर्जी कैंसर को कैसे दिखाते हैं? एक दुश्मन की तरह?
हाँ, एक बहुत ही चालाक, लचीला दुश्मन जो लगातार अपना रूप बदलता है।
किताब ये दिखाती है कि कैसे हमारी समझ बदली है।
मतलब पुराने जमाने में मिस्र और यूनान में लोग क्या सोचते थे?
हाँ, वहां से लेकर आज हम जीन्स के लेवल पर कैसे समझते हैं, ये पूरा सफर है। एक तरह की जासूसी कहानी भी है।
जासूसी कहानी कैसे?
अरे, जैसे वैज्ञानिक और डॉक्टर पीढ़ियों से सुराग ढूंढ रहे हैं, कैंसर क्या है, क्यों होता है, इसकी कमजोरी क्या है।
अच्छा,
और ये सिर्फ लैब की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें सामाजिक पहलू भी हैं, जैसे मैरी लास्कर जैसी एक्टिविस्ट थी।
हाँ, सुना है उनके बारे में।
हेल्थ का मुद्दा बनाया, फिर वो वॉर ऑन कैंसर शुरू हुआ अमेरिका में।
और सबसे जरूरी, इसमें मरीजों की कहानियां हैं।
हाँ, वो बहुत मार्मिक हैं, खासकर मुखर्जी की अपनी एक मरीज कार्ला, उनका जिक्र बार बार आता है। वो कहानी को एक मानवीय चेहरा देती हैं।
तो किताब में सब कुछ है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन से लेकर आज की जो नई दवाएं हैं, टारगेटेड थेरेपी।
हाँ, पूरा स्पेक्ट्रम कवर किया है।
किताब के 6 हिस्से हैं, तो थोड़ा हिस्सों में बात करते हैं ना। पहला हिस्सा कहाँ से शुरू होता है?
पहला हिस्सा हमें ले जाता है पुराने जमाने में, प्राचीन काल से 20वीं सदी की शुरुआत तक।
अच्छा।
और कहानी शुरू होती है मिस्र के एक पुराने पपाइरस से।
अच्छा,
उसमें क्या था?
उसमें ब्रेस्ट ट्यूमर का जिक्र है और इलाज लिखा था, कोई इलाज नहीं है।
सोचिए,
हजारों साल पहले।
निराशाजनक शुरुआत। फिर सदियों तक हिप्पोक्रेट्स और गैलन का वो काला पित्त वाला सिद्धांत चलता रहा कि शरीर में कुछ तरल पदार्थ बिगड़ जाते हैं तो कैंसर होता है।
फिर सर्जरी का दौर आया।
हाँ, 19वीं सदी में विलियम हॉलस्टेड जैसे सर्जन, उन्होंने सोचा कैंसर एक लोकल चीज है, उसे काट कर निकाल दो।
उन्होंने वो रेडिकल मैस्टेक्टोमी शुरू की थी ना, बहुत एग्रेसिव सर्जरी।
हाँ, बहुत ज्यादा। सोच यही थी कि दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दो, चाहे कुछ भी करना पड़े।
लेकिन क्या ये नजरिया काफी था? दूसरा हिस्सा क्या कहता है? एन इम्पेशेंट वॉर 1930-70।
यहाँ कहानी बदलती है, एंट्री होती है कीमोथेरेपी की।
अच्छा, वो दवाइयों से इलाज।
हाँ, सिडनी फार्बर नाम के एक डॉक्टर थे, उन्होंने बच्चों के ब्लड कैंसर ALL में पहली बार केमिकल इस्तेमाल किए, एंटीफोलेट्स।
और उसका नतीजा
ये कि पहली बार मरीजों में अस्थायी सुधार देखा, रमेशन जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात थी।
हाँ, क्योंकि इसने दिखाया कि दवा से भी लड़ा जा सकता है, भले ही बीमारी पूरे शरीर में फैली हो।
बिल्कुल, और इसी दौर में वो मेरी लास्कर आई।
हाँ, सोशल एक्टिविस्ट।
उन्होंने फार्बर के साथ मिलकर लॉबिंग की, पैसा इकट्ठा किया, और फिर 1971 में अमेरिका में वॉर ऑन कैंसर का ऐलान हुआ।
मतलब रिसर्च के लिए बहुत पैसा आया होगा।
हाँ, अभूतपूर्व, और एक उम्मीद जगी कि बस अब कैंसर को हरा ही देंगे।
लेकिन जंग इतनी आसान नहीं थी जैसा कि तीसरा हिस्सा बताता है। विल यू टर्न मी आउट इफ आई कांट गेट बेटर 1970 to 1980।
हाँ, ये वो दौर था जब वॉर ऑन कैंसर की उम्मीदें थोड़ी धूमिल होने लगी। सच्चाई सामने आई।
क्या सच्चाई?
ये कि शुरुआती कीमोथेरेपी बहुत जहरीली थी, बहुत टॉक्सिक।
मतलब साइड इफेक्ट्स बहुत थे,
भयानक। फिर पता चला एक दवा काफी नहीं है तो कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी आई, जैसे ल्यूकीमिया के लिए वैम्प्रेसिमिन, चार जहरीली दवाएं एक साथ।
ओ, ये तो सुनने में ही डरावना है।
हाँ, ये ज्यादा असरदार तो थी, लेकिन मरीजों को बचाने के लिए उन्हें मौत के कगार तक ले जाना पड़ता था। मुखर्जी इसे मेडिकल मैक्सिमलिज्म कहते हैं।
मतलब हर हथियार इस्तेमाल करो चाहे जो हो।
बिल्कुल, प्रगति हो रही थी पर बहुत धीरे और बहुत भारी मानवीय कीमत पर। मुश्किल दौर था।
इसी के साथ साथ एक और कहानी चल रही थी रोकथाम की। चौथा हिस्सा, प्रिवेंशन इज द क्योर, 20वीं सदी के मध्य से।
हाँ, इलाज खोजने के साथ ये सवाल भी उठा कि क्या इसे होने से रोक सकते हैं,
और इसमें सबसे बड़ी सफलता शायद धूम्रपान वाली थी।
बिल्कुल, रिचर्ड डॉल और ऑस्टिन हिल का काम। उन्होंने साबित कर दिया कि स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर होता है, कोई शक नहीं रहा।
सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा कदम रहा होगा जब तंबाकू इंडस्ट्री इतनी पावरफुल थी।
हाँ, और इसी तरह पैप स्मेयर टेस्ट आया सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसने भी रोकथाम में क्रांति ला दी।
तो संदेश साफ था, इलाज जरूरी है पर रोकथाम शायद उससे भी ज्यादा।
बिल्कुल, शायद सबसे अच्छा इलाज रोकथाम ही है।
और फिर वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पांचवा हिस्सा, अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ आर नॉर्मल सेल्व्स, 1970 से 1990, जेनेटिक्स का दौर।
हाँ, ये किताब का शायद सबसे वैज्ञानिक क्लाइमैक्स है।
सालों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने कैंसर सेल के राज खोलने शुरू किए,
ऑन्कोजीन्स की खोज।
हाँ, बिशप और वार्मुस, उन्होंने पाया कि कैंसर करने वाले जीन यानी ऑन्कोजीन कोई बाहर से नहीं आते।
तो फिर
वो हमारे अपने ही सामान्य जीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स का बिगड़ा हुआ रूप है। ये जीन सामान्य सेल ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं।
ओह, मतलब दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही है।
बिल्कुल, ये एक जबरदस्त खोज थी। कैंसर हमारे अपने शरीर का, हमारे जीन्स का ही एक बिगड़ा हुआ विकृत संस्करण है।
इसी वजह से इसे मारना इतना मुश्किल है क्योंकि वो हमसे ही बना है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन इसने एक उम्मीद भी जगाई।
क्या उम्मीद?
कि अगर हम जान लें कि कौन सा जीन बिगड़ा है तो शायद हम सिर्फ उसी बिगड़े हुए हिस्से को निशाना बना सके पूरे शरीर पर हमला करने के बजाय। और यहीं से शुरुआत हुई टारगेटेड थेरेपी की। छठा हिस्सा, द फ्रूट्स ऑफ लॉन्ग एंडेवर्स, 1990 से अब तक।
जी हाँ, ये जेनेटिक समझ का इलाज में बदलने का दौर है, लक्षित थेरेपी।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो ग्लीविक दवा है ना।
हाँ, ग्लीविक, क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया, CML के लिए। ये दवा सिर्फ उसी खास बिगड़े हुए प्रोटीन पर हमला करती है जो CML करता है,
और इसने CML को एक जानलेवा बीमारी से एक मैनेजेबल कंडीशन बना दिया।
बिल्कुल, ये इलाज में एक नए युग की शुरुआत थी, ज्यादा स्मार्ट, सटीक और कम जहरीला।
लेकिन मुखर्जी ये भी कहते हैं कि ये हर कैंसर के लिए इतना आसान नहीं है।
हाँ, वो बहुत यथार्थवादी हैं। वो बताते हैं कि ज्यादातर कैंसर CML से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें कई जीन्स में गड़बड़ी होती है।
तो हर एक के लिए ग्लीवेक जैसी दवा बनाना मुश्किल है।
मुश्किल है, पर कोशिश जारी है।
किताब इस कह सकते हैं सधी हुई उम्मीद के साथ खत्म होती है, रोकथाम, जल्दी पकड़ना और स्मार्ट इलाज पर जोर। तो इस पूरी कहानी से, इस लंबे सफर से क्या बड़े सबक मिलते हैं?
सबसे पहला और सबसे गहरा सबक तो यही है कि कैंसर हमारा ही विकृत स्व है। वो बाहर से आया कोई राक्षस नहीं, हमारे अपने सिस्टम की ही गड़बड़ी है।
ये सोचना ही अपने आप में बड़ा बदलाव लाता है कि हम बीमारी को कैसे देखते हैं।
हाँ, दूसरा सबक है विज्ञान में महत्वाकांक्षा और विनम्रता का संतुलन। हमने बार बार कैंसर को कम आका।
हाँ, वो वॉर ऑन कैंसर वाली बात।
बिल्कुल, हर बार लगा जीत गए पर कैंसर ने फिर अपनी जटिलता दिखा दी, लेकिन हर नाकामी से हमने सीखा भी।
ये जिंदगी जैसा ही है, बड़ी उम्मीदें और फिर असलियत से सामना।
तीसरा, सामाजिक सक्रियता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की ताकत, मैरी लास्कर की कहानी।
हाँ, कि कैसे आम लोग भी बदलाव ला सकते हैं।
बिल्कुल, जन दबाव, जागरूकता, ये चीजें स्वास्थ्य नीति पर असर डाल सकती हैं। भारत में भी हम ये देखते हैं।
चौथा सबक, इलाज का विकास, वो हॉलस्टेड की सर्जरी से लेकर ग्लीवेक तक का सफर।
हाँ, क्रूरता से सटीकता तक, दिखाता है कि कैसे समझ बढ़ने पर बेहतर तरीके मिलते हैं।
और पांचवां, जैसे शायद सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, रोकथाम का महत्व।
हाँ, वो धूम्रपान वाला उदाहरण, उसने किसी भी दवा से ज्यादा जाने बचाई हैं। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतें,
ये भारत के लिए आज बहुत जरूरी बात है जहां लाइफस्टाइल बीमारियां बढ़ रही हैं।
किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो याद रह जाती हैं, कुछ कोट्स या आइडियाज।
हाँ बिल्कुल, जैसे ये आइडिया कि कैंसर हमारे जीनोम में बुना हुआ है, हमारे सामान्य स्व का एक विकृत संस्करण, मतलब दुश्मन अंदर ही है, ये सोचना ही कितना गहरा है।
हाँ, और वो भी कि कैंसर की कहानी ऊंची उड़ान भरते आत्मविश्वास और कुचल देने वाली विफलता की कहानी है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि वैज्ञानिक तरक्की सीधी रेखा में नहीं होती, उतार चढ़ाव आते हैं।
और कैंसर सेल्स के बारे में वो बात भी दिलचस्प लगी कि कैंसर कोशिकाएं हमारे भीतर विकासवाद की भयानक रूप से उत्तम उत्पाद हैं। हाँ, वे बदलने में, ढलने में और हमारे इलाज से बचने के तरीके खोजने में माहिर हैं। ये बताता है कि कैंसर इतना जिद्दी क्यों है, वो सीखता रहता है।
और रोकथाम पर वो बात भी सोचने पर मजबूर करती है, कैंसर को रोकने के लिए हमें उस समाज पर पुनर्विचार करने को तैयार रहना होगा।
हाँ, मतलब सिर्फ व्यक्तिगत आदतें नहीं बल्कि पूरा सिस्टम, हमारा खानपान, पर्यावरण, उद्योग।
तो ये सारी जानकारी, ये समझ, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मरीजों और उनके परिवारों के लिए ये किताब उन्हें ज्ञान देती है और ज्ञान से डर कम होता है।
हाँ, अपनी बीमारी को बेहतर समझें तो इलाज में ज्यादा भागीदार बन सकते हैं।
बिल्कुल, और हम सबके लिए ये रोकथाम पर जोर देती है। स्मोकिंग, डाइट, वजन, रेगुलर चेकअप, ये सब बहुत जरूरी है।
और शायद मेडिकल खबरों को लेकर भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, हर नए चमत्कारी खबर पर तुरंत यकीन न करें।
हाँ, ये समझना जरूरी है कि असली प्रगति धीरे धीरे होती है, सालों की मेहनत से।
मैरी लास्कर की कहानी से प्रेरणा भी मिलती है कि हम भी आवाज उठा सकते हैं स्वास्थ्य के मुद्दों पर।
और सबसे जरूरी, शायद ये किताब सहानुभूति बढ़ाती है कैंसर से जूझ रहे लोगों के प्रति। ये समझने में मदद करती है कि ये एक मुश्किल बायोलॉजिकल लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत कमी नहीं।
हाँ, ये कलंक को कम करने में मदद कर सकती है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात रही, वो है कैंसर का एक बहुत पुराने, लगभग हमेशा से मौजूद दुश्मन के तौर पर चित्रण।
हाँ, कि ये कोई सिर्फ आज की बीमारी नहीं है।
और दूसरी तरफ इंसानी जज्बा, मरीजों का, डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का, जो हजारों साल से लगे हुए हैं, हार नहीं मान रहे।
मेरे लिए जो मुख्य बात है वो है संयमित आशावाद। शायद हम कैंसर को पूरी तरह खत्म न कर पाए, कोई एक जादुई गोली शायद ना मिले।
हाँ, शायद नहीं,
लेकिन प्रगति हो रही है, हम बेहतर हो रहे हैं, भविष्य शायद रोकथाम, जल्दी पकड़ने और ज्यादा स्मार्ट पर्सनलाइज्ड इलाजों के मिले जुले प्रयासों में है।
ये विज्ञान और इतिहास की कहानी तो है ही, पर असल में ये इंसान के जज्बे की कहानी है।
और एक सवाल ये किताब छोड़ जाती है, अगर कैंसर हमारे अपने ही शरीर का हिस्सा है, एक विकृत स्व, तो क्या इसे पूरी तरह हराना मुमकिन भी है, या हमारा लक्ष्य इसे कंट्रोल करना, इसके साथ जीना सीखना होना चाहिए?
ये एक बड़ा सवाल है, सोचने लायक।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।